महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर एक श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाध्वज। उसमें छठवीं पुस्तक में चौथा प्रदेश बंध अधिकार शुरू हो रहा है और आज से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। एक नंबर के पृष्ठ से पढ़ेंगे हम। यहाँ ये चौथो प्रदेश बंधाधिकारो, इन्हें चौथा प्रदेश बंधाधिकार है। इसके शुरुआत में यही नमोकार मंत्र को ही मंगलाचरण के रूप में लिया है। नीचे लिखते अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो। प्रदेश बंध दो प्रकार का है, मूल प्रकृति प्रदेश बंध और उत्तर प्रकृति प्रदेश बंध। यहां से मूल प्रकृति प्रदेश बंध का प्रकरण शुरू होता है। यहां से मूल प्रकृति प्रदेश बंध में भागाभाग समुदाहार का सर्वप्रथम विचार करते हैं, वह इस प्रकार है। आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के, यानी कौन से कर्म में कितना भाग चला जाता है उसकी बात है। एक समय में एक समय प्रबद्ध बनता है, जब आयु बनती तो उसका आठ में विभाजन होता है। तो आयु कर्म का भाग सबसे स्तोक है, इससे नाम और गोत्र कर्म का भाग विशेष अधिक है, इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भाग विशेष अधिक है। ये तीनों का समान है परंतु विशेष अधिक है। इससे मोहिनी कर्म का भाग विशेष अधिक है और इससे वेदिनी कर्म का भाग विशेष अधिक है। उस पर शंका उठाई गई है, आयु कर्म को स्तोक भाग क्यों मिलता है। उसका समाधान, क्योंकि आठ कर्मों में आयु कर्म का स्थितिबंध स्तोक है। इससे आयु कर्म को स्तोक भाग मिलता है, यानी बाकी कर्मों के जो प्रदेश है वो सागरों में विभाजित हो जाते हैं। वेदिनी के सिवा शेष कर्मों में जिसकी स्थिति अधिक है उसको बहुत भाग मिलता है, परंतु वेदिनी को अधिक भाग मिलने का अन्य कारण है। यदि वेदिनी कर्म न हो तो सब कर्म जीव को सुख या दुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। इस कारण वेदिनी को सबसे बहुत भाग मिलता है तथा इसी कारण से सब कर्मों के ऊपर वेदनीय का भागाभाग प्राप्त होता है। यही कारण पहले भी कर्मकांड में पढ़ा था हमने, क्योंकि सुख दुख में निमित्त है वेदनीय कर्म। इसके बिना देखो क्या पढ़ा हमने, हाँ उसके मोनी के उदय में वेदिनी करता है, परंतु डायरेक्ट मोहनीय का सुख दुख में निमित्त परा नहीं बनता वेदनी। मोह हो तो वेदनी, उसके बाद नहीं चल रही, यहाँ वेदनी की चल रही है। नहीं बना सकते, यानी वेदनी सुख दुख में निमित्त है। और ये तो संसारी मुख्यतः मिथ्या दृष्टि की बात है ना,
उनका तो मोहनी कर्म करके अच्छा मानता है,
तथा इसी कारण से सब कर्मों के ऊपर वेदनी का भागाभाग प्राप्त होता है। सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के भी नाम और गोत्र कर्म का भाग स्तोक है। पहले तो जो आठ कर्मों का बंध करने वाले की बात की उन्होंने, इसमें आयु का छोक सबसे थोड़ा है। यहाँ तीन और चार क्यों लिखा, एक और दो प्रदेश बंध दो प्रकार का, उसी को एक कहा। ये पैराग्राफ के नाम देता रहे, पैराग्राफ को ये नाम, पैराग्राफ का नंबर है नहीं, हाँ पैराग्राफ का नंबर है। मुझे लगा विषय को कुछ एक दो तीन में विभाजित कर रहे थे, ऐसा नहीं है। देखो पहले हमने आठ कर्मों की बात देखी, अब सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के भी नाम और गोत्र कर्म का भाग स्तोक है। इससे ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्म का भाग विशेष अधिक है। इससे मोहनीय कर्म का भाग विशेष अधिक है और इससे वेदिनी कर्म का भाग विशेष अधिक है। छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के भी प्रेरणा में छह कर्मों का बंध करने वाला कौन जीव है, दसवें में, बहुत अच्छा, दसवें गुणस्थान वाले। तो छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के भी नाम और गोत्र कर्म का भाग स्तोक है। इससे ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्म का भाग विशेष अधिक है और इससे वेदिनी कर्म का भाग विशेष अधिक है। विशेषण गुणस्थान भेद से बंध चार प्रकार का होता है, आठ प्रकृतिक बंध, सात प्रकृतिक बंध, छह प्रकृतिक बंध और एक प्रकृतिक बंध। एक प्रकृतिक कहाँ लेना, वेदिनी, यहाँ तो मूल प्रकृति को नाम नहीं लेना है हमको, साता वेदी, परंतु उसको वेदिनी का भाग इस तरह से ग्यारहवें में होता, ग्यारहवें बारहवें वेदी। एक प्रकृतिक बंध उपशांत मोह आदि तीन गुण स्थानों में होता है, किंतु जब एक प्रकृतिक बंध होता है तब बंटवारे का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए मूल में इसका उल्लेख नहीं किया है। यानी आठ सात और छह की बात उठाइए, जब एक ही प्रकृति बनती है तो पूरा का पूरा समय प्रबद्ध वेदिनी को मिलता है, बंटवारा नहीं है इसलिए। छह प्रकृतिक बंध सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में होता है तथा सात प्रकृतिक बंध प्रथमादि नौ गुणस्थानों में और आठ प्रकृतिक बंध प्रथमादि सात गुणस्थानों में आयुबंध के काल में होता है। एक्चुअली प्रथमादि सात लिखा है परंतु तीसरा गुणस्थान छोड़कर, इसलिए पिछले इन तीन प्रकार के बंधों में से अपने अपने योग्य स्थानों में जब जो बंध होता है तब बंध को प्राप्त होने वाले कर्म प्रदेशों का विभाग किस क्रम से होता है यह कारण पूर्वक यहाँ बतलाया गया है। आठ कर्मों का जितना स्थितिबंध होता है उनसे आयु कर्म का स्थितिबंध सबसे स्तोक है, क्योंकि इसका जघन्य स्थितिबंध अंतर्मूल और उत्कृष्ट स्थितिबंध 33 सागर है, इसलिए इसमें निषेध रचना सबसे अल्प है। यही कारण है इसे बंध के समय सबसे अल्प भाग मिलता है। नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट सिद्धि मंत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। इसलिए इन दोनों कर्मों का समान भाग मिलकर भी आयु कर्म के भाग से बहुत मिलता है, यानी दोनों में समान है फिर भी आयु से अधिक है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का सिद्धिबंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। इसलिए इन तीन कर्मों को परस्पर समान भाग मिलकर भी नाम और गोत्र कर्म के भाग से बहुत मिलता है। यद्यपि वेदनीय कर्म का सिद्धिबंध भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, तथापि सुख दुख के निमित्त से इसकी निर्जरा सर्वाधिक होती है। अतः इसे मोहिनी कर्म से भी अधिक द्रव्य मिलता है। मैं केवल सुख दुख में निमित्त ऐसा नहीं लेना, उसकी निर्जरा ज्यादा खिलते है इसलिए इसको द्रव्य भी ज्यादा मिलता है। मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट सिद्धिबंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अतः इसे ज्ञानावरण आदि के द्रव्य से बहुत द्रव्य मिलता है। तात्पर्य है कि वेदिनी कर्म के सिवा जिस कर्म के अपने अपने स्थितिबंध के अनुसार जितने निषेक होते हैं, उसी हिसाब से उस कर्म को द्रव्य मिलता है। मात्र यह विवक्षा वेदनीय कर्म पर लागू नहीं होती, इसका कारण पहले दे ही आए हैं। अब यहाँ जो मूल प्रकृति की प्ररूपना शुरू हो गई है उसमें 24 संयोग द्वार, इस अर्थपद के अनुसार यहाँ ये 24 संयोग द्वार होते हैं। यथा स्थान प्ररूपणा सर्वबंध नौ सर्वबंध उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध जघन्य बंध और अजघन्य बंध से लेकर अल्प बहुत्व तक, तथा भुजगार बंध पदनिक्षेप वृद्धि बंध अध्यवसान समुदाहार और जीव समुदाहार। विशेषार्थ यहाँ 24 संयोग द्वारों का निर्देश करते समय प्रारंभ के सात और अंत का एक गिनाया है, मध्य के शेष ये है। यानी पहले में पहले होता है ना प्रारंभ के साथ, यानी स्थान प्ररूपणा सर्वबंध नव सर्वबंध उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध जघन्य बंध और अजघन्य बंध, उसके बाद यानी ऊपर अगर आपको नंबरिंग डालना है 3, 4, 5, 6 और 7 अजघन्य, फिर मध्य के शेष ये है। देखो सादी बंध उसको 8 नंबर देंगे, अनादि बंध ध्रुव बंध अध्रुव बंध, फिर स्वामित्व एक जीव की अपेक्षा काल अंतर यानी एक ही जीव की अपेक्षा, फिर सन्निकर्ष नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय भागा भाग परिमाण क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर और भाव, ये तो 23 यहां हुए, 24वां ऊपर लिखा था अल्प बहुत में, 24 नंबर पर था ना, आदि से लेकर अंत का एक ही गिनाया था। आगे इन 24 संयोग द्वारों का आश्रय लेकर प्रदेश बंध का विचार कर पुनः उसका भुजगार बंध पदनिक्षेप वृद्धि अध्यवसान समुदाहार और जीव समुदाहार इन द्वारा और इनके अवान्तर अनुयोग द्वारा उनके आश्रय से विचार किया गया है। समुदाहार ने उसका जीवों के आश्रय से उसके भेद हमने देखे है ना, इतना बंध करने वाले जीव कितने हैं। अभी हमने अनुभाग बंध में देखा था जीव समुदाहार स्थिति समुदाहार, यानी उसके अनुभाग के प्रकरण में हमने ऐसा देखा था कि जघन्य अनुभाग बंद करने वाले जीव कितने हैं, उससे अधिक बंद करने वाले कितने हैं, फिर उसमें वो यौ मध्य रचना हुई थी। यानी वहां जीवों की संख्या बदली जाएगी। अब स्थान प्ररूपणा में ये दो अनुयोग द्वारा योग स्थान प्ररूपणा और प्रदेश बंध प्ररूपणा। योग स्थान प्ररूपणा में सूक्ष्म अपर्याप्त जीव के जघन्य योग सबसे स्तोक है। इससे बादर अपर्याप्त जीव के जघन्य योग असंख्यात गुणा है। इससे द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीनिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय असंग अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय संज्ञा अपर्याप्त जीव के जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है। इससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है। यानी अपर्याप्त लिए पहले सब सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य सबसे स्तोक लिया, फिर मादर अपर्याप्त लिया, फिर द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेन्द्रिय संगी पंच सभी के अपर्याप्त हो गए। कोई बात नहीं, हो बादर अपर्याप्त का परंतु वहाँ बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त कहना था, सूक्ष्म जो एक इंद्रिय में होते हैं। आपका प्रश्न है अभी सूक्ष्म से जब बादर में आए तो बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त कह दिया था, तो ऊपर जो सेकंड लाइन में सूक्ष्म अपर्याप्त कह दिया था वहाँ सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त चाहिए था। सूक्ष्म एक इंद्रिय में ही होते हैं परंतु सेकंड नंबर पर बादर अपर्याप्त जीव के जघन्य योग असंख्यात गुणा, यानी बादर एक इंद्रिय चाहिए वहां पर। मैंने दोनों ही भेद एक इंद्रिय के लिए जघन्य और उत्कृष्ट में कंपेयर कर रहे हैं। पहले नंबर पर सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त, फिर दूसरे नंबर पर बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, फिर द्विंद्रिय अपर्याप्त, त्रिइंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय असंगी अपर्याप्त। और फिर पंचेन्द्रिय संगी अपर्याप्त ऐसे साथ हुए। ये सब सबके जघन्य लिए थे। इससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा। यहाँ एकेन्द्रिय शब्द डाला, इसे ऊपर चाहिए था वो हमने डाल दिया। इससे बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है। इससे हाँ नंबरिंग कर रही हूँ मैं, सात के बाद आठ सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग। और बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त का भी उत्कृष्ट योग लिया नौ नंबर पर। मेरे ख्याल से हमने योग स्थान में 84 भेद देखे थे, परंतु यहाँ उन्होंने केवल जघन्य और उत्कृष्ट इतना ही लिया है। आपको याद होगा योग स्थान हमने कर्मकांड में देखे थे, उसमें तीन प्रकार के योग स्थान बताए थे। अभी अपनी बात हुई ना वहाँ, आप थे कि नहीं अंतिम दिन पर? उपपाद योग, अच्छा अपने थे उपपाद योग, हाँ बोर्ड पे देखा था। हाँ एकांत वृद्धि योग और फिर परिणाम है। उसका उत्कृष्ट योग लिया। नौ नंबर पर बादर इंद्र अपर्याप्त का भी उत्कृष्ट योग लिया। अब यहाँ से पर्याप्तों की बात उठाएंगे, परंतु उसका जघन्य लेना है। पढ़ो क्या अभी 10 नंबर पर नीचे से चौथी लाइन लास्ट में। इससे सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के जीव के जघन्य योग लिया है। यहाँ पर असंख्यात गुणा। इससे बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव के जघन्य योग असंख्यात गुणा 11। इससे सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण है। ऊपर हमने सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग दिखा था। इससे बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण है। इससे द्विन्द्रिय अपर्याप्त इसका नंबर देना 14, तीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय संगी अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय संगी अपर्याप्त 18 नंबर तक आ गई। जीव के उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है। इससे इन्हीं पर्याप्त जीवों के जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है। यह अपर्याप्त का उत्कृष्ट हुआ। उससे फिर द्विन्द्रिय कर लेना, यानी पांच और ले लेना। हाँ, 19, 20, 21, 22, 23 19 से 23 तक ये पर्याप्तों का जघन्य योग। इससे इन्हीं पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है 24 से लेकर। हाँ, चौबीस से 28। इस प्रकार यहाँ एक एक जीव के योग का गुणकार पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। जैसे भी यहाँ केवल उत्कृष्ट और जघन्य की बात की, मैंने तीन प्रकार के योग बताए थे। यहाँ जैसे हमने 28 भेद बताए, ऐसे ही 28 भेद उपपाद में भी हो गए, एकांत वृद्धि में भी हो गए और परिणाम में भी हो गए। विशेषण मैंने बोला था ना, 84 परिणाम योग स्थान, एक होते उपपाद योग स्थान। यहाँ केवल केवल ऐसा योग इतना ही लिया। हाँ, इन जनरल बात की उन्होंने। यहाँ उपपाद योग स्थान, एकांत वृद्धि योग स्थान और 84 होते हैं। मैंने पहले बोला था 84 भेद है उसके, 28 तारीख।
अच्छा, पहला वाला नहीं लेना है?
कौन सा पहला वाला लेना? ना हरेक में लेना, उपपाद में जगन्य उत्कृष्ट है।
ये भेद बताए तो किसके बताए?
ये जीव समासों में बताए नहीं, ये जैसे 28 का अल्प बहुत्व है। ये मान लेते किसी पर भी घटित करो, उपपाद में, एकांत वृद्धि में और परिणाम में।
एक्स्ट्रा
नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। अभी यहाँ कहाँ से उपपाद किसमें क्या है वो थोड़ा उसमें भी ऊपर नीचे कर्मकांड में बहुत विस्तार से दिया है। देखो अभी हम शायद आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ इतनी विस्तार से बात होने वाली है। विशेषण शायद आएगा ना, मन वचन और काय का आलंबन लेकर। जीव में जो आत्म प्रदेश परिस्पंद रूप शक्ति उत्पन्न होती है उसे योग कहते हैं। यह योग आलंबन के भेद से तीन प्रकार का है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। यह सामान्य लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव से लेकर सहयोगी केवली तक सब संसारी जीवों के उपलब्ध होता है। उसमें भी सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीव के यह सबसे जघन्य होता है और संगी पंजन यह पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट होता है। बीच में जीव समास के भेद से जघन्य और उत्कृष्ट योग किस क्रम से होता है यह मूल में बतलाया गया। प्रदेश अल्प बहुत्व का विचार करने पर पहले तो हमने योग अल्प बहुत्व देखा ना, योग स्थान प्ररूपणम बताया था। तो योग स्थानों में कौन से जघन्य उत्कृष्ट है उसकी बात की। प्रदेश अल्प बहुत्व का विचार करने पर सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव के जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। जहाँ योग सबसे अल्प है वहाँ जो प्रदेश लिया जाता है वो भी सबसे स्तोक है। इनसे बांदर एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव के जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे हैं। इनसे द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीनिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय असंघ्य अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय संघीय अपर्याप्त जीव के जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार आगे योग अल्पभूत्व के समान यह अल्पभूत्व जानना। उन्होंने थोड़े में ही उसको पटा दिया, पूरे 28 के 28 नहीं बताया, किंतु इतनी विशेषता है एक एक जीव के प्रदेश गुणकार पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा बताए यहाँ पर भी वही है। असंख्यात की वैल्यू यहाँ बता दी है, एक्चुअली योग में भी उतना ही है परंतु यहाँ केवल असंख्यात गुणा इतना ही कह दिया। विशेषात पहले योग अल्पभूत्व का कथन कर आए है, प्रदेश अल्पभूत्व उसी के समान है। यहाँ प्रदेश अल्पभूत्व से उत्तरोत्तर कितने गुणे प्रदेशों का बंध होता है यह बतलाया गया है। सबसे जघन्य योग सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि पर्याप्त के होता है, अतएव इस योग से इसी जीव के सबसे जघन्य प्रदेश बंध होता है। इससे बादर एकेंद्रीय लब्धि पर्याप्त के जघन्य योग असंख्यात गुना होता है। इसलिए सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि पर्याप्त के जितने कर्म परमाणुओं का बंध होता है उनसे असंख्यात गुणे कर्म परमाणुओं का बंध होता है। किसको? बादर एकेंद्रीय को। पहले योग अल्पभूतो बतलाते समय असंख्यात गुणे में असंख्यात पद का अर्थ पल्लवों का असंख्यात भाग लिया गया है यह कहे आए हैं। वैसे ही इस अल्पभूतो में भी असंख्यात गुणे में असंख्यात पद का अर्थ पल्लवों का असंख्यात भाग लेना चाहिए, यानी दोनों में ही पल्ल का असंख्यात भाग गुना होता है। इस प्रकार संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तक उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा प्रदेश बंध होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार अल्प बहुत समाप्त हुआ। अब योग स्थान प्ररूपणा, पहले उन्होंने क्या केवल मात्र स्थान प्ररूपणा कही, यहाँ योग स्थान प्ररूपणा है। नहीं, अभी देखो पहला अनुयोग द्वार ही स्थान प्ररूपणा थी, यही शुरू है, उसी का ये भेद है योग स्थान प्ररूपणा। नहीं वो नहीं दे दो, उसमें दोनों है ना, योग स्थान और प्रकृति का स्थान। योग स्थान प्ररूपणा में ये 10 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, वर्गणा प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा, स्थान प्ररूपणा, अनंतरोपनिधा, परम्परोपनिधा, समय प्ररूपणा, वृद्धि प्ररूपणा और अल्पभूत्व। अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा में जीव के एक एक प्रदेश में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इतने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ये अविभाग प्रतिच्छेद किसके लेंगे? योग की शक्ति के। यही आते, ये तो विभाव रूप है ना। यहाँ योग यानी क्या है? विभाव है, प्रदेश परिस्पंद है। परिस्पंद तो उसका एक्चुअल परिस्पंद हुआ, परंतु जो योग की शक्ति उत्पन्न हुई है वो अविभाग प्रतिच्छेदों में ना पाएंगे हम। वही तो वहाँ पर्याय की बात। अभी यहाँ योग किसमें हो रहा है? तो आत्मा के प्रदेशों में हो रहा है। आत्मा के एक प्रदेश में जितना योग है ना, उसी को यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद किया।
योग के अविभाग
प्रतिच्छेद कर्मों की बात होती है, ज्ञान की बात होती है। यहाँ योग की बात है। योग में तो असंख्या थी के वेरिएशन होगी, अनंत तो होंगे ही नहीं, अनंत में होती है। ज्ञान के होते हैं या कषाय के भी होते हैं अविभाग प्रतिच्छेद, वो अनंत में होते हैं। जहाँ षडगुणी हानि वृद्धि होती है वो अनंत में है, और यहाँ तो हम चतुस्थान वाली होगी, चतुस्थान होगी। हाँ देखो यहाँ क्या कहते हैं,
असंख्यात
जगत श्रेणी के असंख्यात है, यानी क्या? देखो अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा में जीव के एक एक प्रदेश में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अविभाग प्रतिच्छेदों की बात, इतने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। विशेषार्थ बुद्धि द्वारा शक्ति का छेद करने पर सबसे जघन्य शक्त्यंश का जघन्य शक्त्यंश को तकी की लिखा है ना, मुझे बराबर छपाने में शक्त्यंश की वृद्धि का नाम प्रतिच्छेद संज्ञा है। क्या कहते हैं? यानी बुद्धि के द्वारा शक्ति के हम छेद करेंगे, भाग करेंगे, तो सबसे छोटे भी छोटी जो शक्ति का अंश है, शक्ति का अंश कितनी है वो तो असंख्यातों में हो गया, परंतु वो वृद्धि की बात है। एक के पश्चात कितनी मिनिमम वृद्धि हो सकती है उसको कहेंगे प्रतिच्छेद। यह वृद्धि अविभाज्य होती है, अतः इसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रकृति में योग शक्ति विवक्षित है, जीव के प्रत्येक प्रदेश में इस योग शक्ति के देखने पर वह असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिच्छेदों से युक्त योग शक्ति को लिए हुए होता है। यद्यपि यह योग शक्ति किसी जीव प्रदेश में जघन्य होती है, किसी जीव प्रदेश में उत्कृष्ट, पर अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा विचार करने पर वह असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेदों को लिए हुए होकर भी जघन्य से उत्कृष्ट में असंख्यात गुणे अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। उदाहरणार्थ एक शुक्ल वस्त्र लीजिए, उसके किसी एक अवयव में कम शुक्लता होती है और किसी में अधिक। जिस प्रकार उस वस्त्र में शुक्ल गुण का तारतम्य दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में भी योग शक्ति का तारतम्य दिखाई देता है। इससे विदित होता है इस तारतम्य का कोई कारण होना चाहिए। यहाँ तारतम्य का जो भी कारण है उसी का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। इन अविभाग प्रतिच्छेदों के क्रम से वर्गणा कैसे उत्पन्न होती है, यानी अविभाग प्रतिच्छेदों के क्रम से वर्गणा कैसे उत्पन्न होती है, आगे इसी बात का विचार किया जाता है। वर्गणा प्ररूपणा की अपेक्षा योग के असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद मिलकर एक वर्गणा होती है। इस प्रकार असंख्यात वर्गणाएं होती हैं। क्योंकि वे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। अब इसी का विशेष अर्थ, पहले हम प्रत्येक प्रदेशगत योग के अविभाग प्रतिच्छेदों का विचार कर आए हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि रूप यह अविभाग प्रतिच्छेद सभी जीव प्रदेशों में उपलब्ध होते हैं, कारण कि योग सब प्रदेशों में समान रूप से नहीं उपलब्ध होते। उदाहरणार्थ दाहिने हाथ से वजन उठाने पर इस हाथ के प्रदेशों में जितना अधिक खींचाव दिखाई देता है उतना खींचाव कंधे के पास से प्रदेशों में नहीं दिखाई देता, तथा कंधे के प्रदेशों में जितना खींचाव दिखाई देता है उतना खींचाव शरीर के अन्य अवयवों के प्रदेशों में नहीं प्रतीत होता। इसलिए सब जीव प्रदेशों में योग शक्ति की हीनाधिकता के कारण उसका तारतम्य किस क्रम से उपलब्ध होता है यह विचार करना पड़ता है, और इसी विचार के परिणाम स्वरूप योग का निरूपण अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा स्पर्धक और योग स्थान इत्यादि अधिकारों द्वारा किया जाता है। अविभाग प्रतिच्छेदों का विचार तो किया ही है, वे जितने जीव प्रदेशों में समान रूप से पाए जाते हैं उन जीव प्रदेशों की वर्गणा संज्ञा है। देखो क्या कहना चाहते हैं, सभी में तो समान नहीं होता, जितने असंख्यात प्रदेश है ना लोक प्रमाण, तो सभी में अलग अलग जो कुछ है उन जिन जिन प्रदेशों में समान पाए जाते हैं उन प्रदेशों को हम एक नाम देंगे, उसको कहेंगे वर्गणा। जिसे हम कर्मों में देखते थे, कर्मों में भी अनुभाग की अपेक्षा उसको वर्गणा कहते हैं। एक वर्गणा में सभी कर्म परमाणुओं का विभाग से समान होता था, यहाँ जितने हम प्रदेशों को एक वर्गणा कहेंगे आत्मा के उतने प्रदेशों में समान योग है। ये हम जघन्य में जघन्य देख रहे हैं। पुनश्च इनसे आगे के जीव प्रदेशों में एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक पाया, इसलिए इन जीव प्रदेशों की दूसरी वर्गणा बनती है। अभी दूसरी एक वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, इसे अनेक वर्गणा, उनको हम स्पर्धक नाम देंगे। तो ये अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए हो गए वर्गणा। तो जो दूसरी लाइन है हमारी वर्गणा की, उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक पाया जाता है। पुनः इनसे आगे के जीव प्रदेशों में दो अधिक अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, इसलिए इन जीव प्रदेशों की तीसरी वर्गणा बनती है। इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक के क्रम से उत्तरोत्तर चौथी आदि वर्गणाएं बनती हैं, जो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। इस प्रकार वर्गणाओं का विचार किया, आगे स्पर्धक का विचार करते। ये समझ में आई बात, हमने अभी तक तो कर्मों में देखे थे वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि वगैरह, अब यहाँ जीवों के प्रदेश पर लगाएंगे। वहां तो कर्मों की तो हम कहते थे वो तो हीनाधिक भी बनते हैं, यहाँ तो प्रदेश तो उतने ही रहेंगे असंख्यात प्रदेश, उनमें योग शक्ति जितनी हीनाधिक होगी उसके अनुसार यहाँ योग स्थान और स्पर्धक आदि की बात चलेगी। वर्गणा है स्पर्धक, लोक प्रमाण असंख्यात है, हाँ उसमें भी, हाँ तो मैक्सिमम प्रदेश तो जघन्य अनुभाग वाले होंगे, क्योंकि उनमें भी ऐसी रचना होती है ना गोपुच्छा का, जैसे हम वर्गणा में और इसमें देखते थे नीचे की वर्गणा में अधिक परमाणु और ऊपर कम होते थे, यहाँ पर भी जो जघन्य वर्गणा है उसमें प्रदेशों की संख्या मैक्सिमम होगी। अभी स्पर्धक की बात करेंगे। स्पर्धक प्ररूपणा की अपेक्षा असंख्यात वर्गणाएं जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है, मिलकर एक स्पर्धक होता है। इस प्रकार असंख्यात स्पर्धक होते हैं क्योंकि ये जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। सबके लिए प्रमाण वैसा ही कहेंगे, जगत श्रेणी का असंख्यात। तकलीफ नहीं होनी जगह जगह। हाँ उसमें भी छोटे बहुत बड़ी संख्या है, यानी सामान्य कथन यही है।
स्पर्धक योग का कबल होना नहीं था,
वो तो दूसरे तीसरे स्पर्धक में होगा। देखो अभी हम देखेंगे इसको, केवल वो पहला जगन्य जिसमें योग है ना, उन प्रदेशों की संख्या कुछ जगत प्रतर का असंख्या का भाग होनी चाहिए मेरे ख्याल से, अभी मुझे पक्का याद नहीं है। बाकी तो जो जगत श्रेणी के असंख्या तो भाग मैंने एक वर्गणा कितनी है तो जगत श्रेणी के असंख्या तो भाग एक स्पर्धक में, ऐसे स्पर्धक कितने टोटल तो जगत श्रेणी के असंख्या तो भाग विशेषण। पहले जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाओं का विचार कराए हैं, उन सब वर्गणाओं का समुदाय प्रथम स्पर्धक होता है। इसी प्रकार अन्य अन्य जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाओं का अन्य अन्य स्पर्धक बनता है, और ये सब स्पर्धक भी मिलकर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार स्पर्धकों का विचार कर आगे इनके अंतर का विचार करते हैं। अंतर प्रवर्तना की अपेक्षा एक एक स्पर्धक के बीच कितना अंतर होता है तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण अंतर होता है, इतना अंतर होता है। विशेषण, पहले हम जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण अन्य अन्य वर्गणाएं मिलकर एक एक स्पर्धक बनता है यह बतलाए हैं। वह हमने यह भी बतलाया है एक एक स्पर्धक के भीतर जितनी वर्गणाएं होती है उनमें प्रथम वर्गणा से लेकर अंतिम वर्गणा तक प्रत्येक वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ प्रथम स्पर्धक में चार वर्गणाएं और प्रथम वर्गणा के जीव प्रदेशों में पांच पांच अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, तो दूसरी वर्गणा के जीव प्रदेशों में, क्योंकि वर्गणा यहाँ जीवों के प्रदेशों को कह रहे हैं, छह छह तीसरी वर्गणा के जीव प्रदेशों में सात सात और चौथी वर्गणा के जीव प्रदेशों में आठ आठ अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे। अब विचार इस बात का करना है क्या जैसे प्रथम स्पर्धक की प्रत्येक वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक पाया जाता है, उसी प्रकार प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों से दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में एक अधिक ही अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाएगा या इनके बीच कोई अंतर है, और यदि अंतर है तो कितना। समझ में आती बात। पहले हमने जिनमें जघन्य परंतु समान योग है उसको एक लाइन में रखा, उसको हम कहेंगे एक वर्गणा। एक अविभाग प्रतिच्छेद जिन जिन प्रदेशों में उसको सेकंड लाइन में रखा उसको कहेंगे दूसरी वर्गणा। ऐसे एक 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 से बढ़ते हुए रखना है, तो जहां बीच में अंतर पड़ जाता है उसको नहीं लेना, तो बिना अंतर के एक एक से बढ़ने वाले वर्गणाओं को कहेंगे स्पर्धक। तो ये ऐसे स्पर्धक भी कितने होते हैं, वर्गणाएं भी कितने होते जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग में। परंतु अभी पहले स्पर्धक के ऊपर की वर्गणा और दूसरे स्पर्धक की जघन्य वर्गणा, इनमें जो योग का अंतर कितना है अविभाग प्रतिच्छेद में, क्या मेन बाकी ये क्या पूछ रहे। पहले तो वर्गणा कैसे बढ़ती थी तो एक एक के डिफरेंस, फिर दूसरा स्पर्धक शुरू हुआ वहां का जो पहली वर्गणा होगी उसमें अंतर कितना पड़ा तो कहते असंख्यात लोग। नीचे से चौथी लाइन, इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह अंतर प्ररूपणा आई है। इसमें बताया गया है एक एक स्पर्धक के बीच असंख्यात लोक प्रमाण अंतर है। इसका आशय यह है अनंतर पूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनसे असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेदों का अंतर देकर आगे के स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। जैसे हमने कर्मों में देखा था एक स्पर्धक की वर्गणाएं अनंत होती है और उसके अंतिम वर्गणा से ऊपर के स्पर्धक की जघन्य वर्गणा में भी अनंत गुना का डिफरेंस है। यहाँ असंख्यात गुना था और वो असंख्यात का प्रमाण है लोक, असंख्यात लोक। अब सात नंबर के पृष्ठ पर आए, उदाहरणार्थ प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के प्रत्येक प्रदेश में आठ आठ अविभाग प्रतिच्छेद है, इसलिए यहाँ असंख्यात लोक का प्रमाण चार मानकर इतना अंतर देकर द्वितीय स्पर्धक के प्रथम वर्गणा के प्रत्येक प्रदेश में तेरह तेरह अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। इसी प्रकार आगे सब स्पर्धकों में अंतर दे देकर उनकी वर्गणाओं के उक्त प्रकार के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। आगे इन स्पर्धकों के आधार से स्थान की उत्पत्ति कैसे होती है यह बतलाते हैं, यानी एक योग स्थान में क्या है, तो कहने वर्ग है, वर्गणा है, स्पर्धक है, गुणानी है, वो सब मिलकर एक योगस्थान कहलाएगा। इसलिए कहते हैं स्पर्धकों के आधार से स्थान की उत्पत्ति। यह बतलाते हैं स्थान प्ररूपणा की अपेक्षा असंख्यात स्पर्धक जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं मिलकर जघन्य योगस्थान होता है। इस प्रकार असंख्यात योगस्थान होते हैं क्योंकि उनका प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। विशेषार्थ, पहले हम जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धकों का निर्देश कराए हैं, वे सब स्पर्धक मिलकर एक जघन्य योगस्थान होता है। यह सूक्ष्म निगोद्रव्य पर्याप्त एक जीव संबंधी योगस्थान है। इसी प्रकार अन्य अन्य जीवों के सब प्रदेशों में रहने वाली योग शक्ति के आश्रय से अन्य अन्य योग स्थान की उत्पत्ति होती है। इस हिसाब से सब योग स्थानों की परिगणना करने पर वे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। ये टोटल योग स्थान कितने हैं, तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग कोई भी योग स्थान एक जीव को होगा तो अलग अलग समय में होगा। एक जीव को एक समय में एक ही योग स्थान होगा, ये तो योग स्थान जब कहेंगे हम टोटल योग स्थान कितने हैं, अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा कहेंगे। यहाँ प्रश्न यह है जबकि एक एक जीव के आश्रय से एक एक योग स्थान बनता है और जीव अनंत अनंत है, ऐसी अवस्था में अनंतानंत योग स्थान होने चाहिए न कि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। समाधान यह है जीव अनंतानंत होकर भी योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होते हैं, क्योंकि एक जीव के जो योग स्थान होता है अन्य बहुत से जीवों के वही योग स्थान संभव है। उदाहरण स्वरूप साधारण वनस्पति को लीजिए, साधारण वनस्पति के एक एक शरीर में अनंतानंत निगोह जीव रहते हैं, इनके आहार और श्वासोश्वास आदि समान होते हैं, वे एक साथ मरते हैं और एक साथ उत्पन्न होते हैं, अतः इन जीवों के समान योग स्थान के होने में कोई बाधा नहीं है।
जो
हो सकते हैं, इसी प्रकार अन्य जीवों के भी समान योग स्थानों का प्राप्त होना संभव है, अतः जीव राशि के अनंतानंत होने पर भी योग स्थान सब मिलाकर जग श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होते हैं, यह सिद्ध हुआ। अब आगे इन योग स्थानों में समान स्पर्धक न होकर उत्तरोत्तर अधिक स्पर्धक होते हैं यह बतलाते, ये तो नेचुरल है। पहले ये जगन्य योग स्थान में शुरुआत की थी हमने जगन्य से, और उसके जितने कोई योग हो गए यानी स्पर्धक हो गए, योग नहीं स्पर्धक हो गए, दूसरे योग स्थान में स्पर्धक ज्यादा हो गए क्योंकि योग भी ज्यादा है ना, वहां पर भी जगन्य से शुरुआत करके ऊपर तक पहुंचेंगे सब। जगन्य समान है सबका, जगन्य समान है और जितना उत्कृष्ट होगा उतना योग स्थान उत्कृष्ट कहलाएगा। मान लेते ना एक में 10 पदक है, दूसरे में 25 है, तीसरे में और कितने, इस तरह से वो तो असंख्यातों में होते हैं परंतु वो वृद्धि रूप से होते। अब आगे इन योग स्थानों में समान स्पर्धक न होकर उत्तरोत्तर अधिक स्पर्धक होते हैं, यह बतलाते हैं। अभी उसी को ही बतलाएंगे। और अनंतरोप निधा की अपेक्षा, यानी एक एक योग स्थान को हम देखेंगे उसको अनंतरोप निधा कहेंगे। अनंतरोप निधा की अपेक्षा जगन योग स्थान में स्पर्धक सबसे स्थूल होते हैं, इनसे दूसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं, इनसे तीसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। यह विशेष का प्रमाण अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्धक है। यानी एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में कितने स्पर्धक ज्यादा है, तो अंगुल के असंख्यात विभाग। विशेषण, एक योग स्थान में कुल स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। यह हम पहले बतलाए हैं। इस हिसाब से सब योग स्थान में वे उतने उतने ही होंगे, होते होंगे, यह शंका होती है। अतएव इस शंका का परिहार करने के लिए यह अनंत रूप निधा अनुयोग द्वार आया। इसमें अलग से नहीं है ना, ये योग स्थान में सब आ गए ना। अच्छा, योग स्थान में उन्होंने 10 बताए थे। देखो 5 नंबर के पेज पर ऊपर लिखा ना, विभाग प्रतिच्छेदना प्ररूपना, वर्गणा की प्ररूपना, स्पर्धक की प्ररूपना, अंतर की प्ररूपना, ये हो गया स्थान प्ररूपना। फिर अनंत रूप निधा, ये अपनी बात चल रही है। योग का एक नंबर यहाँ हुआ था 5 नंबर पर, वर्गना प्ररूपना वहीं पर था योग के दूसरे। हाँ, योग स्थान वाली प्ररूपना 5 नंबर पर 1 और 2, स्पर्धक प्ररूपना यहाँ पर आ गई 11 नंबर पर। हाँ, 6 पेज पर ये 3 स्पर्धक प्ररूपना और अंतर प्ररूपना की अपेक्षा 4 नंबर। इसके बाद स्थान प्ररूपना होगी ना, स्पर्धकों के आधार से स्थान की, तो स्थान प्ररूपना है 13 नंबर का पॉइंट, 13 नंबर का पैराग्राफ। पांच नंबर। फिर नीचे जो अनंत रूप निधा है 14 नंबर का पॉइंट, वो योग वाला 6 पॉइंट है। अभी तो हम परंपरोक निधा तक नहीं पहुंचे। देखो हम विशेषार्थ पढ़ेंगे 7 नंबर के पृष्ठ पर। विशेषार्थ, एक योग स्थान में कुल स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। यह हम पहले बतलाए हैं। इस हिसाब से सब योग स्थानों में वे उतने उतने ही होते होंगे, यह शंका होती है। अतएव शंका का परिहार करने के लिए यह अनंत रूप निधान योग द्वार आया है।
तो कथनीय योग स्थान में स्पर्धक की संख्या समाज होती है, जो शिक्षा लक्ष्य पर्याप्त करके कथनीय योग स्थान होता है वहाँ पे सभी लोगों के स्पर्धक
असंख्यात गुण
है। वहाँ पे सभी
समान कैसे होते, समान कैसा होगा,
स्पर्धक को की संख्या
जहाँ योग ज्यादा वहाँ स्पर्धक ज्यादा।
नहीं, जगतीय योग
जगत ने योग कहो, योग स्थान मत कहो,
जगत ने योग है।
पहली वर्गना में कहो तो ठीक है।
अलग अलग होगा
नेचुरल,
जगत जगत ने योग होगा वहाँ पे स्पर्धक को समान होगी।
जगत ने योग तो एक प्रदेश में होता है, स्पर्धक तो असंख्यात वर्गणाओं को कहते हैं।
जगत ने योग तो जो हम जानते हैं, अरे जीव के परिणाम जीव के सभी प्रदेशों का जो जगत योग लेते हैं सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त तक हम लोग जो जगतीय योग देखा वहाँ पे स्पर्धकों की।
फिर से सुनना, योग स्थान अलग है और योग अलग है। अभी देखना यहाँ सुनना बराबर, ये जीव के सभी प्रदेशों को हमने ऐसा बताया, सभी जो लोक प्रमाण असंख्या प्रदेश है उसको हम ऐसा लिखेंगे। उसमें जिसमें जगन्य में जगन्य योग है उनको हमने पहली वर्गणा नाम दिया, एक अभिभाग प्रतिच्छेद वाले वो दूसरी वर्गणा तीसरी वर्गणा इससे बीच में गैप छोड़कर ये दूसरा स्पर्धक ये तीसरा स्पर्धक चौथा स्पर्धक इस तरह से।
नहीं अभी मेरा प्रश्न क्या है, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त करता जगन्य योग होने के लिए,
जगन्य योग किसी का भी हो समान है। आप योग स्थान एक बार कह रहे हैं और योग एक बार कह रहे हैं, अभी हमने जो देखा ना योग तो योग स्थानों की अपेक्षा वो बात है, उसी को यहाँ योग कहा। देखो हमने जो कहे थे आपको उपपाद योग स्थान, हमने अभी जो 28 नंबर लगाए थे ये सबका अपना अपना जगन योग अलग बता है ना। क्योंकि ये जो हम कर्मकांड में तो बेसिक है इसका। वैसे ही होगा,
ऐसे ही होगा कि स्पर्धकों की संख्या में कोई वेरिएशन नहीं,
स्पर्धकों की संख्या में बढ़ेगी ना।
नहीं स्थान एक जगह में योग स्थान है वहाँ पे नाना जी की अपेक्षा
नाना मत कहो,
अलग अलग
योग स्थान है वो नाना जीवों की अपेक्षा होगी, एक जीव की अपेक्षा अलग अलग कालों में होगी।
हाँ बराबर,
हाँ ये तो योगों के वेरिएशन है।
और एक जगह में योग स्थान में स्पर्धकों की संख्या समान होती है उसमें अलग अलग वेरिएशन होते हैं।
अभी ये जगह में योग स्थान है, मान लेते इसमें इतने स्पर्धक है, जो दूसरा योग स्थान है उसमें इतने योग स्थान है, इस तरह से आगे आगे स्पर्धकों की
संख्या
फिक्स है, जगन्य में स्पर्धकों की संख्या फिक्स है।
तो वही मेरा क्वेश्चन था कि स्पर्धकों की संख्या फिक्स हो गई,
फिक्स है। वही तो कह रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या कह रहे हैं, देखो 7 नंबर से क्यों पढ़ते, अनंत रूप निदान, जगन्य योग स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े होते
हैं, थोड़े में समान है।
अभी समान के कहाँ प्रश्न है, जितने कोई संख्या होगी कितने हैं तो जगत सैनिक की संख्या, इनसे दूसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं, क्योंकि जब हम योग कहेंगे तो जो ग्रैंड टोटल है उसको मिलकर योग नाम देंगे,
टोटल मिला तो
और यहाँ जो मैक्सिमम है उसको कहेंगे यहाँ सब जगह नहीं। अब इसका जो दूसरे नंबर पर जो जगह उसका जो योग है वो तो इससे स्पर्धक ज्यादा ही हो गए। आगे वाले का टोटल मिलकर हम उसका कितना योग है ऐसा कहेंगे तो स्पर्धक ज्यादा ही हो गए, तभी तो वो अधिक बढ़ेगा।
तो मेरे उल्टा पूछा था कि एक जगह में योग स्थान में नाना जी की अपेक्षा कम।
अरे नाना जी क्यों डाल रहे हैं,
संख्या
जघन्य योग स्थान जो है वो किसका होगा तो सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त। और मान लेते कि वो तो बादर लब्धि पर्याप्त कोई ये वाला स्थान हो, आप समझ नहीं रहे।
सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त दो चीजें हैं,
आप सुन लो,
उन दोनों का जघन्य योग स्थान है तो
आप दोनों को ही जगनी योग स्थान कह रहे हैं। हाँ। तो समान हो गए ना, अनंत जीव भी क्यों ना हो, वो तो समान ही होना है। जो दूसरे नंबर पर योग स्थान है नहीं, अंगुल का संख्या के बाद। अभी हमने क्या पढ़ा?
हाँ।
फिर से पढ़ो, देखो देखो
जगन्य स्पर्ध सगड़ा है, जगत सगड़ा स्थान
है। देखो सब में जगन्य समान है, जगन्य योग नहीं कहा उसको, पहली वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद समान है उसको उस जीव का योग नहीं कहलाते। सभी सभी जो जितने स्पर्धक है उसको मिलकर उस जीव का जगन्य योग है, उत्कृष्ट योग है ऐसा कहेंगे। एक जीव के सभी प्रदेश गिनना है ना, केवल थोड़े प्रदेशों में गिनना है?
सभी प्रदेश को गिनना,
तो सभी प्रदेश मिलकर हम कहेंगे उस जीव का इतना योग है। सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त का योग सबसे कम है कहेंगे तो उसका पूरा योग स्थान का जितना अविभाग प्रतिच्छेद है उसको गिनेंगे। तो ये सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त के जितने जगन्य योग वाले जीव होंगे उनका यही पहला योग स्थान होगा। अब अन्य कोई सूक्ष्म एकेंद्रीय ही है उसके बहुत सारे हो गए ना, जगन्य से उत्कृष्ट तक के बहुत सारे भेद हो गए उसके, कि उसके एक नंबर का योग स्थान है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, उसको योग स्थान को या उस जीव का योग को बात एक ही है। यहाँ तो केवल 28 ही उन्होंने डिफरेंस किए, हमने तो उसको 84 में देखे थे। हाँ ये तो आसान है उल्टा तो समझने में। यानी उसमें स्पर्धक कितने अधिक हो गए तो सूक्ष्मगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक, नेचुरली जितने स्पर्धक बढ़ाओ तो ऊपर का योग ज्यादा है तो उसका योग भी बढ़ेगा आगे आगे। देखो हम फिर अनंत रूप निदा पढ़ते 7 नंबर के पेज से। अनंत रूप निधा की अपेक्षा, अनंत रूप निधा ने एक एक स्थान में एक एक योग स्थान की अपेक्षा बात चलेगी। जगन ने योग स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े, इनसे दूसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं, इनसे तीसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। यह विशेष का प्रमाण अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक है, यानी इतने स्पर्धक एक स्थान से दूसरे स्थान में ज्यादा हो विशेष। एक योग स्थान में कुल स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं, यह हम पहले बतलाए हैं। इस हिसाब से सब योग स्थानों में वे उतने उतने ही होते होंगे यह शंका होती है। अतएव इस शंका का परिहार करने के लिए यह अनंत रूप निधा अनुयोग द्वार आया है। इसमें बतलाया गया है कि सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त के बहु के प्रथम समय में होने वाले जघन्य योग स्थान में जितने स्पर्धक होते हैं उनसे द्वितीय योग स्थान में वे अंगुल के असंख्यात पे भाग अधिक होते हैं। आगे इसी
का
मंगल का संग उतनी संख्या लेना
समय
में क्यों? जब हमको काल गिनना है तो हम समय में कहेंगे, क्षेत्र गिनना है तो
नंबर
अंगुल का असंख्या का भाग एक क्षेत्र का भी प्रमाण हो सकता है, काल का भी प्रमाण हो सकता है, संख्या का भी संख्या अंगुल का संख्या का भाग।
आपने जो पहले बताया था
यदि उनको हम समय में कन्वर्ट करेंगे तो
वो जो समय जो आप कन्वर्ट करा रहे हैं उतने ही प्रदेश है ना,
उसमें प्रदेश नहीं उतनी संख्या में योग ज्यादा है, उसमें स्पर्धकों की संख्या ज्यादा है।
तीसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट
देखो आप सब घोटाला करें, अभी हम ऐसा कहेंगे
कैसे
एक मिनट में 60 सेकंड है, हमें 60 ये संख्या केवल देखनी है, तो कहीं हम 60 गुणा कहेंगे तो 60 गुना के लिए हम कहेंगे मिनट में जितने सेकंड है उतने गुना, या मिनट में कितने सेकंड है तो 60 सेकंड है, तो वो घंटे में कितने मिनट है तो 60 मिनट है। अभी ऐसा कुछ हम उसका हिसाब करेंगे इतने इतने गुना है, ये जो 60 जो संख्या है वो कितने गुना है, तो कहो ना 240 का चौथा भाग है, 240 का चौथा भाग गुना है, ऐसे हम अंगुल के असंख्यात भाग गुना है ऐसा कहेंगे। असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने समय है उतनी है।
पदकों की संख्या भी इतना फर्क
पड़ता है, यानी वो कितनी बड़ी है वो समझने के लिए आपको वो समय का प्रमाण बताया है। हम डायरेक्ट अंगुल जो असंख्यात है उसका असंख्या का भाग है इतना लेना है हमको, यानी वहाँ उन समयों की बात नहीं करे तो कोई बात नहीं है वहाँ पर।
यहाँ
समय इतने असंख्या
तो यहाँ पे पहले जो स्थान में जितने स्पर्धक थे उससे दूसरे स्थान में जो स्पर्धकों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, कम प्रदेश में विभाग प्रतिशत बढ़ते बढ़ते जाएंगे,
प्रदेश तो उतने ही रहने वाले
प्रदेश तो फिक्स ही है,
उसमें प्रथम वर्गना में प्रदेशों की संख्या कम आई जाएगी क्योंकि वही वर्गना ज्यादा बनेगी, उसकी वर्गना या स्पर्धक ज्यादा बनेंगे, यहाँ तो प्रदेश तो उतने ही रहने वाले हैं। नहीं समझे? यहाँ जीव के प्रदेश मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विभाजित हुए, अब ये प्रदेशों की संख्या उतनी ही है और उसका स्पर्धा कम है तो ये ऐसे वर्गणा के जो है ऐसे होंगे, यहाँ कहना है तो इस तरह से होंगे। इसमें इस वर्गणा में प्रदेश कम होगा, इसमें ज्यादा होगा,
टोटल वर्ग की संख्या एक
लोग टोटल वर्ग कर्म वर्ग यानी टोटल प्रदेश लोक प्रमाण, क्योंकि प्रदेश उतने ही रहेंगे, कर्मों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, कर्म ही न दिखाने फिर भी एक समय प्रबद्ध वहां पर भी हम लेते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं जहां स्थिति बनती है ज्यादा स्थिति बनती है तो अधिक निषेक तैयार होते हैं, अधिक निषेक तैयार होते तो एक ही समय प्रबद्ध उतना का उतना अगर लेंगे तो जहाँ स्थिति कम बनती है उसमें एक एक निषेक में प्रदेश ज्यादा है, और जहाँ स्थिति लंबी बनती है वहाँ एक एक निषेक में प्रदेश कम है, ऐसे यहाँ पर लेना। देखो 8 पेज पर शुरुआत से इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक के बहु के प्रथम समय में होने वाले जगन योग स्थान में जितने स्पर्धक होते हैं उनसे द्वितीय योग स्थान में वे अंगुल के असंख्या के भाग अधिक होते हैं। आगे इसी क्रम से संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त के प्राप्त होने वाले योग स्थान तक वे उत्तरोत्तर अधिक अधिक होते जाते हैं। अब यहाँ यह देखना है वे उत्तरोत्तर अधिक अधिक कैसे होते जाते हैं। बात यह है कि जघन्य योग स्थान के प्रत्येक स्पर्धक की प्रत्येक वर्गणा में जितने जीव प्रदेश होते हैं उनसे द्वितीयादि योग स्थानों के प्रत्येक स्पर्धक की प्रत्येक वर्गणा में वे उत्तरोत्तर हीन होते हैं। नेचुरली क्योंकि प्रदेश उतने ही रहने वाले हैं। अधिक अधिक योग शक्ति वाले जीव प्रदेशों का उत्तरोत्तर न्यून न्यून प्राप्त होना स्वाभाविक है क्योंकि सबकी जगन्य एक लेवल पर है। देखो फिर से सबके जगन्य एक लेवल पर है और पूर्ण योग स्थान सभी स्पर्धक मिलकर वो योग स्थान के देने आता है तो मैक्सिमम नंबर यहाँ तो मिनिमम वाले जीव इसमें है और ये नंबर ऑफ स्पर्धक जितना जो ऊपर का जो स्पर्धक है उसकी जो वैल्यू है उतने उसके योग कहलाएगा। आगे आगे वाले भी जघन्य की वैल्यू तो उतनी है परंतु उसमें प्रदेश कम हो गया और अधिक ऊपर तक उसकी रचना होगी तो इसमें स्पर्धक कितने अधिक है तो उसके लिए कहेंगे सुचंगल के असंख्या के भाग इतने स्पर्धक अधिक हो गए। इस प्रकार अनंत रूप निधा का विचार कर परम्परोप निधा का विचार करते हैं। हाँ सा योग वाला सा परम्परोप इतने स्थान जाने पर वो दुगुना होता है वगैरह बात कहेंगे अभी। देखो परम्परोप निधा की अपेक्षा जघन्य योग स्थान में जो स्पर्धक है उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर स्पर्धकों की दूनी वृद्धि होती है। इसको एक गुणहानि स्थानांतर कहेंगे ना या द्विगुण वृद्धि स्थान यानी एक स्पर्धक दूसरा स्पर्धक इस तरह से जगत श्रेणी के असंख्यात भाग स्पर्धक जाएंगे तो दूनी वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक दूनी दूनी वृद्धि जाननी चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेद यानी योग दो गुना हो जाएगा। एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर जगत शनि के असंख्यात भाग प्रमाण है और नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण है यानी एक बार डबल हुए दो बार डबल हुए इसे कितने बार डबल होते हैं तो श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण यानी द्विगुणा होने के लिए जय श्रेणी का असंख्यात भाग लगता है और ऐसे कितने बार द्विगुणा होता है तो पल्ल के असंख्यात भाग बार होता है। नाना गुणहानिया कम है और जो एक गुणहानि होने का जो नंबर ऑफ स्पर्धक है वो बहुत ज्यादा है। तदनुसार नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर स्तोक है इनसे एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर असंख्यात गुण है। हमारी भाषा में एक गुणहानि और नाना गुणहानि यानी नाना गुणहानि कम है और एक गुणहानि असंख्यात गुण आहे. विशेषक समझ में आता है एक गुणानी यानी नंबर ऑफ स्पर्धक. जहां जाके प्रदेशों की संख्या आधी होती है उसको एक गुणहानि कहेंगे, प्रदेश गुणहानि. और एक योग द्विगुण वृद्धि हानि के लिए यहाँ स्पर्धकों की संख्या को लिया है.
सर यहाँ पे कंपटीशन पर्यटकों की संख्या के हिसाब से जगत श्रेणी की हो रही
है. न
जगत श्रेणी
स्पर्धक
नाना गुणानी पर्यटकों की संख्या और स्पर्धकों की संख्या जगत श्रेणी की संख्या.
परंतु वो दो गुना हो रही है ना, स्पर्धकों की संख्या एक स्थान से दूसरे स्थान में कितने ज्यादा है, अंगुल का संख्या. तो अंगुल का संख्या तो भाग एक बार बढ़ा, अंगुल का संख्या तो भाग दो बार बढ़ा, तीन बार बढ़ा, चार बार बढ़ा. तो ओरिजिनल में कितना था जगत श्रेणी की असंख्या के बाद, वो जब दो गुना हो जाएगा तब क्या होगा,
एक
गुणहानि. इसमें स्पर्धकों की संख्या लेना, मान लेते इसमें छह स्पर्धक है और प्रति समय दो दो बढ़े तो छह दो आठ हुए, आठ दो सोलह हुए, सोलह दो इस तरह से आठ बढ़े, दस बढ़े, बारह बढ़े. तो बड़े नहीं, ये छह थे, ये आठ है, ये दस है, ये बारह है. वो अलग जगन योग स्थान में जो गुणहानि है. देखो देखो जगन योग स्थान किसको कहा, सबसे नीचे जगन्य वर्गणा है. वर्गणा में जीव प्रदेश है विशिष्ट संख्या, वो थोड़े कम कम होते चले जाते, प्रदेशों की संख्या घटती चली जाती है और अभिवाह प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ते हैं एक स्पर्धक में, फिर दुगुना होकर दूसरा स्पर्धक, तीन गुना होकर तीसरा स्पर्धक. तो कहते हैं ये तो प्रदेशों की संख्या घटती चली जाती है, जितने स्पर्धक जाने के बाद प्रदेश आधे हो गए उसको यहाँ एक गुना नहीं कहते. वो जो एक योग स्थान में है, यहाँ अलग बात हो रही है, यहाँ योग स्थानों में गठित कर रहे. एक योग स्थान में कितने स्पर्धक है, मान लेते यहाँ छह है, यह बड़े 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 जब जाके ये छह के बारह हो जाएंगे तब एक द्विगुण वृद्धि स्थानांतर हुआ. यहाँ लिखते हैं ना देखो, एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर यानी योग स्थान में इतने स्पर्धकों की वृद्धि यानी नंबर ऑफ स्पर्धक डबल हो गए. तो उसी को लिए क्या कहा, देखो फिर से पढ़ती हूँ. परम्पराक निधा की अपेक्षा जगन्य योग स्थान में जो स्पर्धक है उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर स्पर्धकों की दुगुनी वृद्धि होती है. यानी जितने जगन्य योग स्थान में स्पर्धक थे उनसे दो गुणे स्पर्धक जिस योग स्थान में होते हैं वो हमने दो गुणी वृद्धि कही. इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक दूनी दूनी वृद्धि जानना चाहिए.
स्पर्धकों की वृद्धि की बात,
स्पर्धकों की संख्या नंबर ऑफ स्पर्धक. इसी को कहते एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है. एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर ने कितने जाकर ये दो गुणा हो गए, हाँ जगत श्रेणी का संख्या. और नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर यानी हमारी भाषा में नाना गुणहानि पल्ल के असंख्या तो भाग गुणा है. और एक गुणहानि ने स्पर्धकों की संख्या जहां डबल होती है उसको एक गुणहानि कहेंगे. यहाँ पर एक गुण वृद्धि है एक्चुअली. आगे बढ़े अभी हम इसी का विशेषार्थ पढ़ेंगे. पहले अनंत रोग निधा में यह बतलाया था कि जगन्य योग स्थान के स्पर्धक कौन से दूसरे योग स्थान में तथा इसी प्रकार आगे आगे तुच्छंगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण स्पर्धकों की वृद्धि होती जाती है। अब यहाँ इस अनियोग द्वार में यह बतलाया है इस प्रकार एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे आदि से चौथे आदि में स्पर्धकों की वृद्धि होती हुई वह जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान जाने पर दूनी होती। तात्पर्य यह है कि प्रथम योग स्थान में जितने स्पर्धक होते हैं उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण योग स्थान आगे जाने पर वह अंतिम स्थान में प्राप्त होने वाले योग स्थान में वे दूने हो जाते हैं। यही रुकेंगे और फिर हम दोबारा इसको पढ़ेंगे परम पुरोपनिधा के बाद विशेषाद भी पढ़ेंगे। तारीख को यही डालते हैं फिर फिर से रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा।